ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासकीय परिषद की बैठक में हर घर नल से जल और यमुना की सफाई जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो कल पिंक, मजेंटा और ग्रे लाइन पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फार्मा ड्रग तस्करों के गिरोह का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कम कार्बन उत्सर्जित करने वाला भारत का हरित हवाई अड्डा बन गया है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित नीति आयोग की शासकीय परिषद की बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में दिल्ली से संबंधित कई विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई, जिसमें हर घर नल से जल, यमुना की सफाई जैसे विषय प्रमुख रूप से शामिल थे।
दिल्ली के सारे विषय, चाहे वो हर घर नल के द्वारा जल हो, यमुना की सफाई हो, उसमें आपसी राज्यों का कोऑर्डिनेशन से लेकर के केंद्र से हमारी जो हमें सहायता चाहिए, सभी विषयों पे चर्चा हुई और बहुत ही पॉजिटिव चर्चा रही और उसमें दिल्ली को मुझे लगता है कि पूरे देश भर से सहयोग मिलेगा।
वहीं पर्यटन के विषय पर एक प्रश्न का जवाब देते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में एक नया टूरिस्ट सर्किट बनाने का कार्य कर रही है ताकि दिल्ली में घूमने आने वाले सैलानियों को नई जगह घूमने को मिले।
हम दिल्ली में एक नया टूरिस्ट सर्किट उसको डेवलप कर रहे हैं ताकि दिल्ली में कोई भी सैलानी घूमने के लिए आए तो उसको नई नई जगहें, चाहे वो भारत मंडपम है, यशो भूमि है, अमृत उद्यान है या हमारा शहीद स्मारक है, ऐसा एक पूरा टूरिस्ट बेल्ट आदरणीय अम्बेडकर सेंटर जो बना है उस तरीके से हम एक पूरा टूरिस्ट सेक्टर डेवलप करेंगे।
श्रीमती गुप्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में दिल्ली की भूमिका केवल सहायक नहीं बल्कि प्रेरणास्पद और नेतृत्वकारी स्तंभ के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये महज विकास की योजना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सपनों, संभावनाओं और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक राष्ट्रीय अभियान है और इसका हिस्सा बनना सभी के लिए गौरव का विषय है। वहीं बैठक में शामिल होने से पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली गैर जिम्मेदार सरकारों के आचरण के कारण दिल्ली के अधिकार की बात आयोग की बैठक में नहीं रखी जा रही थी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कल दिल्ली सहित देश भर में सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी। दिल्ली मेट्रो ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइन पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करने का निर्णय लिया है। दिल्ली मेट्रो के सूत्रों ने बताया कि आमतौर पर रविवार को मेट्रो सेवाएं सुबह 7 बजे शुरू होती हैं, लेकिन परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये सेवाएं कल 1 घंटे पहले शुरू की जाएंगी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 को लेकर लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के कुछ केस के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी के अस्पतालों को एक एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और ये एडवाइजरी एक नियमित निगरानी का हिस्सा है। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी अस्पताल हर स्थिति के लिए तैयार हैं और अस्पतालों में हर एक चीज की पूरी व्यवस्था है।
तैयारी के रूप में हमारे सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हो रही है, डॉक्टर्स की सारी टीमों से बात हो रही है। प्राइमरी किसी चीज के लिए दिल्ली सरकार तैयार तत्पर है और किसी को पैनिक होने की इसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वेरिएंट ने अभी जो रूप दिखाया है वो एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की तरह लगता है शुरुआती समय में।
दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्रराज ने सिंह ने आज शहर के दिलशाद गार्डन में सुगम्य सहायक योजना के तहत दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र, वॉकर, ब्रेल किट, स्मार्टफोन, स्मार्ट स्टिक और अन्य उपकरण वितरित किए। कार्यक्रम के बाद श्री सिंह ने कहा कि सशक्त दिव्यांग समर्थ भारत संकल्प की दिशा में दिव्यांगों को सम्मानजनक और सुविधाजनक जीवन देने के लिए और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने तथा आधुनिक उपकरण देने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार दिव्यांगजनों के आत्मबल, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक फार्मा ड्रग तस्करों के गिरोह का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में सक्रिय यह गिरोह ट्रामाडोल टैबलेट और कोडीन आधारित सिरप की तस्करी के शामिल था। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई में आरोपियों के पास से कुल 2,360 ट्रामाडोल आधारित कैप्सूल, 135 कोडीन आधारित सिरप और 5 मोबाइल जब्त किए गए। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई में आरोपियों के पास से 8 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई में गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक अफ्रीकी मूल की महिला भी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के अंतिम खंड शताब्दी नगर से मोदीपुरम की परिचालन तैयारियों का निरीक्षण किया। श्री गोयल ने अधिकारियों के साथ ट्रॉली से इस पूरे खंड की यात्रा की। उन्होंने पूरे 17 किलोमीटर खंड की अप और डाउन दोनों लाइनों का निरीक्षण किया, वायडक्ट का जायजा लिया और इस खंड में स्थित नमो भारत स्टेशनों पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। NCRTC के अनुसार इस निरीक्षण का उद्देश्य कॉरिडोर की ऑपरेशनल तैयारियों का आकलन करना था। दिल्ली के बवाना में DSIDC औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 2 में आज तड़के एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। अग्निशमन विभाग के अनुसार केमिकल और प्लास्टिक के इस फैक्ट्री में आग लगने की घटना की सूचना सुबह लगभग 5 बजे मिली। विभाग ने बताया कि आग बुझाने के लिए मौके पर कुल 17 गाड़ियों को भेजा गया। अग्निशमन विभाग के डिविजनल फायर अधिकारी अशोक कुमार जायसवाल के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया है और इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
सवेरे भोर में 4:48 की कॉल मिली है, बवाना जे 10 इंडस्ट्रियल एरिया में आग है, जो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। केमिकल प्लास्टिक फ्लेमेबल चीज है, इसमें बिल्डिंग कोलैप्स होने के बाद पूरी गिर गई। आप देख सकते हो कोई इंजरी नहीं है। अभी 17 गाड़ियां हैं और आग लगभग बुझ चुकी है। बेसमेंट के अंदर मलबा दबा हुआ है, उसको हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 36 में से 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि नीति आयोग की शासकीय परिषद की ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने बताया कि बैठक के दौरान केंद्र और राज्यों की एकजुटता देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर ये कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे व्यस्त और सबसे हरा भरा हवाई अड्डा बन गया है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल की ओर से जारी की गई वर्ष 2024 की स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा एशिया का एकमात्र एयरपोर्ट है जिसे कार्बन उत्सर्जन कम करने में उच्च मान्यता लेवल 5 एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से मिली है। रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सफर कराने वाले दिल्ली हवाई अड्डे में कार्बन प्रबंधन और उत्सर्जन में कमी के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 4 वर्षों में डायल ने कार्बन उत्सर्जन में 52% की कमी और प्रति यात्री कार्बन उत्सर्जन में 36% की कमी हासिल की है। पंचायती राज मंत्रालय 26 मई से नई दिल्ली में पंचायत उन्नति सूचकांक संस्करण PAI 2.0 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य डेटा संचालित शासन के माध्यम से पंचायतों को सशक्त बनाना है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र, समावेशी और सतत विकास के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर डेटा आधारित निगरानी और योजना के लिए क्षमता निर्माण करना है। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्थानीय संकेतक रूपरेखा पुस्तिका का विमोचन और उन्नत PAI 2.0 पोर्टल तथा SOP का शुभारम्भ किया जाएगा। PAI को स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े 9 विषयों के आधार पर ग्राम पंचायतों की प्रगति का आकलन और निगरानी करने के लिए विकसित किया गया है। इन विषयों में गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल पर्याप्तता, स्वच्छ पर्यावरण, बुनियादी ढांचा, शासन, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पूर्वोत्तर में उभरती हुई खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स की शुरुआत की जाएगी। वो आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 के दौरान आयोजित एक सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री मांडविया ने कहा कि ये नॉर्थ ईस्ट गेम्स हर वर्ष आयोजित किए जाएंगे और इनमें ओलंपिक खेलों के साथ साथ पारंपरिक खेल भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया गेम्स की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल भारत के लिए अगले 10 वर्षों के दौरान ओलंपिक के शीर्ष 10 राष्ट्र और अगले 25 साल में शीर्ष 5 देशों में शामिल होने के लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। उन्होंने बताया कि भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों और 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अपनी बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। श्री मांडविया ने कहा कि भारत भविष्य में कई अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा।
स्पोर्ट्स सेक्टर में हमारे पोटेंशियल को कैसे हार्नेस्ट करें, उसके लिए खेलो इंडिया की श्रेणी चल रही है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स टैलेंट को आइडेंटिफाई करके टैलेंट को नर्चर करने की कोशिश की जा रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया की एक श्रेणी चलाई है जिसमें खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स को भी हम ऐड कर रहे हैं। हर साल खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स होगी। नॉर्थ ईस्ट गेम्स में नॉट ओनली फॉर ओलंपिक्स गेम्स बट ट्रेडिशनल गेम्स को भी महत्व दिया जाएगा।
कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज कहा कि पूर्वोत्तर अब भारत का बाहरी क्षेत्र नहीं है, ये भारत की विकास यात्रा का नया मुख्य केंद्र है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि मिजोरम 100% साक्षरता दर प्राप्त करने को लेकर अपने युवाओं की उद्यमशील भावना तक लचीलेपन और सामुदायिक शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत कर रखा है। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन का उत्सव मनाने के साथ हमें इसकी क्षमता को उजागर करने के लिए जोखिम लेने, कौशल विकास और इसकी वास्तविक संभावना को प्राप्त करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना चाहिए।
और इसलिए अभी हमने स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस एक प्रोग्राम तैयार किया है। एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा स्कूल्स में के माध्यम से, अभी पायलट को हम लॉन्च करेंगे और 1,00,000 बच्चों को हम इस सुविधा देंगे। प्योरली ऑनलाइन कोर्स एंड असेसमेंट रोल्ड इन विद क्रेडिट।
राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासकीय परिषद की बैठक में हर घर नल से जल और यमुना की सफाई जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो कल पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइन पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक फर्मा ड्रग तस्करों के गिरोह का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कम कार्बन उत्सर्जित करने वाला भारत का हरित हवाई अड्डा बन गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।